Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad, Adhyay 6, 12th Mantra hai. Pahle Uchcharan. एको वशी निष्क्रियाणां बहुना मेकं बीजं बहुधायः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां एकं बीजं बहुधाय करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां।
जो आप चाहते न वही चीज आज आपको मिल रहा। बहुत दिन से आप सोच रहे होंगे कि प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में बहुत दिन से आ रहे हैं, तड़के उठना पड़ता है, सरस्वती माता सोती को झोला रात को भर के चलो, सभी सोचते होंगे। वही आज यहां आपको दे रहे हैं। क्या चीज? नित्य सुख। आपको नित्य सुख चाहिए, अनित्य सुख को छोड़ करके। अनित्य मतलब संसार के जो पदार्थों का सुख संपदा है उसको छोड़कर आप यहां आते। तो नित्य सुख कैसे होता उसको बता रहे कि एको वशी, एक मेवा द्वितीय है। वशी मतलब कि वसु अस्या अस्तिति वशी, ऐसा करना। वसु अस्या अस्तिति वशी, जिसके वश में पूरा संसार है, ये पूरा संसार उसके अधीन है, इसलिए वशी कहते। जैसे हम धनी बोलते ना, तो धनी मतलब क्या होता है? धन वाला। धनु अस्यास्ति धनी मतलब धन वाले को धनी बोलते हैं। ऐसे ही पूरा संसार जिसके वश में अधीन है, शासन में, उसको वशी कहते। निष्क्रियाणम, निष्क्रिय है, कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया नहीं। बहुनाम एकम बीजम बहुधाय करोति, एक मेवा द्वितीय होकर। बहुनाम एकम बीजम बहुधाय करोति, बहुतों का एक ही बीज करता है। अविद्या एक है, माया विद्या च एक ही। माया अविद्या एक है, दो तीन चार नहीं। तो सभी जीवात्माओं का, प्राणियों का एक ही वो बीज है, अविद्या। जैसे एक बड़ा भारी पेड़ है, बीज एक होता है मोटा, उसी बीज से बहुत सारे शाखा प्रशाखा टहनियां पत्ते फूल फल लगते। ऐसे अनेक प्राणियों का एक ही बीज जो करता है विद्या को अव्याकृत, माया। बहुधाया करोति, बहुधा मतलब बहुत प्रकार से जो इसका विस्तार करता है। अब वो कहां पर है? तम आत्मस्थम, आपके हृदय में है। आत्मा मतलब हृदय में है। ये अनुपश्यन्ति धीरा, अनु मतलब कि शास्त्र आचार्य परंपरा से, मनमाने ढंग से नहीं, धीर पुरुष जिसको साक्षात करते। तेषां सुखम शाश्वतम, उनको शाश्वत सनातन सुख उपलब्ध होता है। नेतरेषाम, जो बेचारे कर्मों में विषय में वासना में लगे रहते उन्हें नहीं मिलता है, उन्हें भी सुख मिलता है। कौन सा सुख मिलता है? क्षणिक। विषय जन्य सुख बिल्कुल क्षणिक है, जघन्य है, नहीं के बराबर है। आपको अनुभव करना, आज तुम्हें उपाय बता देता हूं। उपाय अनुभव करना है ना, तो जैसे आप अपने किसी प्रियतम प्रिय वस्तु पदार्थ के लिए रात भर जागते रहते, नींद नहीं आती। किसी ने फोन कर दिया कि अमेरिका से मैं रात को एयरपोर्ट पर 11 बजे पहुंचूंगा, बाहर निकलते निकलते 1 बज जाएगा और पहुंचते पहुंचते 3-4 बचेगा, तो आप पूरी रात उसके प्रतीक्षा में बिता देते, सोते फिर भी नींद नहीं आती। मतलब रात्रि जागरण किया आपने, ये निश्चित है कि आने वाला आ जाएगा, घुलने वाला नहीं, ये भी पक्का पता है, फिर भी उसमें इतनी प्रियता है, प्रेम है कि आप न चाह करके भी जागते रहते हैं, नींद नहीं आती। ऐसे ही आप उस अपने आत्मा की प्रतीक्षा करें, रात भर वेदांत का मनन करके देखना, तबीयत नहीं खराब होगी, हमारी गारंटी है 100%। हाँ, विषय विषयक चिंतन करते हुए जागते हैं तो तबीयत खराब हो सकती, पर रात भर यदि आप परमात्मा का चिंतन करते हुए वेदांत का चिंतन हुए जागरण करें ना, तो देखना दूसरे दिन ज्यादा स्वास्थ्य एनर्जी पावर। एक आध घंटा भी आपने सो ली, आज देखो केवल 1-1.5 घंटा सोया हूं मैं, 12:30 तक तो बैठा ही था, 1:30-2 बजे फिर थोड़ा लेटा, फिर बैठ गया, मुश्किल से 4 से 5:30 के बीच सोया 1.5 घंटा। तो ज्यादा जागने से तबीयत खराब नहीं होता, हाँ उल्टा पुल्टा बात सोचेंगे तो खराब होगा। यदि आप मंत्र जप करें, ध्यान करें, वेदांत का चिंतन करें, चाहे आंख खोलकर चाहे बंद करके चिंतन करे ना, तो उसमें आपको दुगुना एनर्जी पावर महसूस होता है। 1-1.5 घंटे निद्रा पर्याप्त है, क्योंकि जब हम आत्मा का चिंतन करके मंत्र जपते, ध्यान करते, स्वरूप का चिंतन करते, तो उस समय एक आध्यात्मिक, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं ना, एक आध्यात्मिक पावर शक्ति ऊर्ध्वगमन होती है। और जब हम संसार का चिंतन करते हैं तो देखना ऊपर से नीचे तक जैसे कोई चीटी चलती हो, पावर अधोगमन करता। तो सामान्य व्यवहारिक जीवन में जब हम किसी प्रियतम का चिंतन करते, प्रतीक्षा करते, रात बीत जाती पता ही नहीं चलता, और प्रातः काल तबीयत बिल्कुल नहीं खराब, वो तो आकर के सो जाता 4 बजे 8 बजे उठेगा, आप 1 घंटे के बाद उठकर तुरंत तैयारी करने लग जाते हैं उसके व्यवस्था के लिए, तो तबीयत खराब नहीं होती। तो जब सामान्य प्राणी के प्रतीक्षा में तैयारी में किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं होती, तो उस आत्मा के चिंतन में जो लगे रहते अहर्निश, उनको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती। विषय विषय कोई चिंतन करता हो, किसी की पत्नी अमेरिका से आ रहे हो, पति आ रहा हो, लड़का आ रहा हो, लड़की आ रही हो, तो ये विषय कहलाएगा, इसको बोलेंगे विषय। तो विषय विषय चिंतन करने से एक क्षणिक सुख की उपलब्धि होती है, परंतु यदि आप आत्मा का चिंतन करें तो आत्मा का चिंतन करने से शाश्वत सनातन कभी न छिनने वाला नित्य सुख की प्राप्ति होती है। नेतरेषाम का दिया, और जो लोग अनात्मा का चिंतन करते उनको शाश्वत सुख नहीं मिलता, क्षणिक मिलेगा। बढ़िया सुंदर सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, अब रसगुल्ला रखा है तो देखने में बड़ा मजा आता है, उसको बोलेंगे प्रिय। और जब पैसा लेकर हाथ से छोड़िए तो मोद हो गया, और खाने के बाद प्रमोद, इसके बाद सब गया। प्रिय मोद प्रमोद तो हुआ, पर बाद में वही ज्यादा खा लिए तो बदहजमी, शुगर की चिंता, चरम रोग का भय, कितनी समस्या। तो ये जो मोदक को देखना, स्पर्श करना और निगलना, तीन क्रिया है ना, आंख से देखना, स्पर्श करना और निगलना, तीनों कहते प्रिय मोद प्रमोद। पर बाद में दुख समस्या और सुख उड़ जाता है हवा में, पर यहां पर ऐसा नहीं। यदि आप आत्मा का अहर्निश हमेशा चिंतन विचार करें, चिंतन विचार क्या कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, ये संसार धोखा है, परिवर्तनशील है, झटका देने वाला है, जिस प्रकार से हमारा शरीर हमें धोखा दे रहा है, ऐसे दुनिया ही, जब हमारा शरीर हमें धोखा देता है, झटका देता है, बदल जाता है, तो शिकायत नहीं करते। क्या सुंदर बचपना था, जवानी थी, तो आप किसी से नहीं कहते देखो इस शरीर कितना बढ़िया बचपना में था, कितना अच्छा जवानी में था, अब यही सिकुड़ गया, इसकी हमने 50 साल तक सेवा की, ये धोखा दे दिया, किसी से कहते आप? क्या करते? बोलते अरे भाई क्या करे, अवस्था है, समय है, उस समय निकल गया जो बचपना जवानी थी, बोलते ना। ऐसे ही जैसे कि शरीर और इंद्रियां परिवर्तित हो रही, ऐसे संसार के व्यवहार, सगे संबंधी बंधु बांधो अपने पराये भी बदलते रहते, परिवर्तन इनाम है संसार का। और आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है वेदांत में दीक्षित हो जाइए, यहां तो अपरिवर्तनीय तत्व है, ये बदलना ही नहीं। तो विक्षेप इसलिए होता है क्योंकि हम संसार के परिवर्तन बदलाव को अंगीकार नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, हालांकि बदलाव इसकी सच्चाई है। जब दूसरे बदले से व्यवहार करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन आता तो कह रहे देखो कैसा इसका व्यवहार अदला बदला हो गया, अब कारण ढूंढते हैं क्या कारण है, क्यों इसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, ढूंढते ना। वो तो स्वाभाविक है, संसार का लक्षण है परिवर्तन, बदलाव, चेंजिंग। एक आत्मा ही है जिसका देश काल अवस्था व्यवस्था से परिवर्तन होता ही नहीं। तो आप आत्मा है ऐसा चिंतन जब करेंगे, और संसार परिवर्तनशील है, मिथ्या है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, ऐसा चिंतन से मन में प्रसन्नता होगी, वैराग्य होगा, वहां से चित्त हटेगा, उपरत होगा। जब वहां से चित्त हटेगा तो अपने आप अंतर्मुख हो जाएगा। ये जो हमारा चित्त मनोवृत्ति संसार के विषय में अटका हुआ है, भटक रहा है, वहां से हटने का सबसे अच्छा उपाय है कि वहां उसके स्वरूप का चिंतन थोड़ी देर के लिए करें कि वास्तव में संसार का स्वरूप क्या है, सच्चाई क्या है। संसार जड़ है, अनित्य, परिवर्तनशील, और एक न एक दिन संसार धोखा देगा। ऐसा जब चिंतन करते हैं तो मन वहां से उपरत हो जाता है, वैराग्य होता है, फिर अपने आप आत्मचिंतन में आप डूब जाते। तो इससे जो सुख मिलेगा वह शाश्वत है, नित्य सुख है, और विषय विषयक चिंतन से क्षण भंगुर अनित्य सुख है। जब तक विषय दूर है तभी तक सुख मिलता है, ये भी बात है। जब तक कोई भी विषय आपसे दूर है ना, तो बैठे बैठे मनोराज करने से बड़ा मजा आता है, किसी का कोई प्रिय पुत्र पत्नी या पति बाहर गया हो, यहाँ चिंतन करके बड़ा मजा आता आएगा, तो ऐसा बात करेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा सुनेंगे, वो ऐसा उत्तर दे, कल्पना करते ना, है नहीं यहाँ, पर मन में हम एक उसकी प्रतिकृति कल्पना करते और करते जाते हैं और भी बात भी करते जाते, और आया आने के बाद फिर वो सारा जो कल्पना का साम्राज्य है ना बिखर जाता, फिर तो होता भगवान करे वापस चला जाए, तो वही बढ़िया था। तो देखो इसका नाम है विषय विषयक चिंतन, तो विषय विषयक चिंतन से किसी को सुख नहीं मिला। याति महाराज ने बिल्कुल दृढ़ता के साथ कह दिया, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, साफ साफ दो टूक में, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये भोगों को हमने नहीं भोगी, ये हमको भोग लेते, रूप रस गंध स्पर्श कान शब्दों को सुनते सुनते बहरा हो गया, कान रूपों को देखते देखते अंधा हो गया, नंबर के चश्मे बढ़ते जाते परंतु लालसा मिटती नहीं, आप नित्य नए रूपों को देखने की कल्पना करते। वास्तव में रूप में सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य हमारी कल्पना में है, हकीकतें हैं। सौंदर्य किसी बालक या स्त्री या पुरुष के पिंड में नहीं, सौंदर्य है हमारी कल्पना में, हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं अपने मन से कि बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा, जो आपके लिए सुंदर हमें दूसरे के लिए कुरूप होता है, जो दूसरे के लिए कुरूप हो आपके लिए सुंदर, तो हमारी ये मन की कल्पना जिस प्रकार से एक शराबी जब शुरुआत करता है शराब पीना तो पी नहीं पाता, कड़वा जलन होती है, बदबू आती फेंक देता, पर वही धीरे धीरे उस कड़वे शराब में अभ्यास करते करते इतना स्वाद विकसित कर लेता है उसके बिना रह नहीं सकता। अब उसे मालूम पड़ गया कि शराब बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है, बुराई है, शरीर का नाश होता है, परिवार में कलह होता है, बदनामी होती, फिर भी छोड़ नहीं सकता, आखिर क्या हुआ, उसमें सड़े हुए जल, शराब का मतलब जानते ना, सड़ा हुआ जल का नाम शराब, तो आहिस्ते आहिस्ते स्वाद विकसित कर लिया। ऐसे हम लोग जो है ना रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनमें जो है ना सौंदर्य का मिठास का अच्छाई का शोभन का अध्यास कर लेते, पर है नहीं। आप खरोच कर देखना, जो सोना की परीक्षा करते हो क्या करते, लिखा है घर्षण निघर्षण ज्वलन स्वर्णो परीक्षते, घर्षण से निघर्षण से और जलाकर परीक्षा करते, उसको घिसते, पहले घिसने समझ में नहीं आता है तो खरोच लगाते हैं कोई तीक्ष्ण चीज से, उससे बात नहीं बनती है तो अग्नि में जलाकर देखते हैं ये असली कि नकली सोना, कितना इसमें मिलावट है कितना असली है। ऐसे ही आप इस संसार कजरा खरोच के देखना तो सुंदर कुछ लगता हो, बात मीठी हो, जैसे कि खरोचते ना किसी चीज को, बाजार में जाते हैं तो सब्जी को कैसा उलट पलट के जरा दबा दबा के देखते हैं कि नहीं आप कैसा है फिर लेते हैं। ऐसे आप जहां भी सौंदर्य अच्छाई मिठास लगे वहां आप जरा घर्षण निघर्षण उसको जला के देखना, जलाना कैसे, तो श्रुति कहती है अग्नि वागो भूत्वा मुखे प्राविशत, अग्नि बाणी बनकर मुख में प्रवेश हो गई, जरा बाणी से दो चार कड़वा पड़वा बोल के देखना, तुरंत उसी दिन मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में कितना आपके प्रति प्रीति, कितना श्रद्धा, कितना प्रेम, कितना है, कितना दिखावा, कितना असली है मालूम पड़ जाएगा। तो संसार का परीक्षण करने से क्या मालूम पड़ता है, कुछ भी नहीं, परिक्ष लोकान कर्म चीतान निवेदम आयात नास्ति अकृता कृतेन। संसार का परीक्षण करेंगे तो आपको प्राण वैराग हो जाएगा, लगे सब वैसे ही है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। इसी बात को बोल रहे हैं, जब आप ऐसा चिंतन करेंगे तो देखना कितना बड़े में शांति आनंद। संसार में जो मौत का भय है ना, भय मिट जाएगा। मौत का भय तभी लगता है जब हम किसी चीज को पकड़ लेते, दूसरे के चीज को पकड़ के रखते हैं तो डर लगता है कब छीन ले, और दूसरे का चीज पकड़ाएंगे तो भय किस बात का। ये शरीर अपना नहीं, प्रकृति का है, पंचभूत का, माया का। इसको जब हम अपना मान लेते तो भय लगता है कि मौत छीन लेगी। पहले से छोड़ देंगे तो मौत भी कुछ नहीं छीन सकती, कुछ होगा तब तो मौत छीनेगी। आप तो आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, पहले से शरीर में देहाभ्यास को छोड़ दिया है तो मौत भी कुछ छीन नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती, दुख नहीं हो सकता। तो संसार के चिंतन से दुख, और मन का स्वभाव है हमेशा कुछ न कुछ चिंतन करता रहता, सोने तक करता, सोने के बाद करता, सुषुप्ति में थोड़ा बंद हो जाता। तो चिंतन करना है तो कह रहे आत्मा का चिंतन करना चाहिए। बहुत युक्ति है, मंत्र जप कर सकते, प्राणायाम, ध्यान, विचार नहीं, संसार को थोड़ा और सोचने का। बहुत सोच लिया ना, थोड़ा और सोचने का। क्या सोचने का? कि पहले आपने संसार में अच्छाई सोची, अब सोचने का कि ये संसार जो हमने अच्छाई इसमें सोची, देखी, समझी, वो है कि नहीं, कहां तक है। ऐसा सोचेंगे ना तो सोचना बंद हो जाएगा। भाई आग से आग समन होता है, कांटे से कांटा का। ऐसे थोड़ा और सोचने का कि संसार को बहुत सोचा, बहुत समझा, बहुत अपना माना, पर कुछ मिला नहीं। जब आज तक कुछ नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? ऐसा सोच करके वहां से अपने आप मन हट जाएगा, इधर एकाग्र हो जाएगा करके देखने का। और मन जब जाए ना तो घड़ी से उसको कहना, देख भाई दो मिनट जहां जाना वहां चले जा, खूब जाओ, नहीं जाएगा।